Dentro.
Om Akyanti Medandasya Gyananjana Chalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadam Mayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Patakamalam Sri Gurun Vaishnavam Scha Sri Rupam Sagrajatam Sahakana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakan Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Kopesha Gopika Kanda Radha Kanda Namostate Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vansha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Oma Pavitra Pavitrova Sarvabhastam Gatopiva Yasmarit Pundarikaksham Sabhaya Vyantara Suchi.
Purified or unpurified, or even having passed through all situations, one who remembers the beautiful lotus-eyed personality of Godhead becomes purified within and without.
अगर कोई व्यक्ति शुद्ध हो या अशुद्ध हो या हर प्रकार की स्थिति से गुजरा हो अगर वो सुंदर कमल नयन भगवान को स्मरण करता है तो वो अंदर से और बाहर से शुद्ध हो जाता है
This verse reveals to us the essence of the purpose of the human form of life.
ये श्लोक हमें बताते हैं कि मानव जीवन के उद्देश्य का सार क्या है
And it especially gives us the understanding of our duty upon accepting initiation.
और हमें बताते हैं कि दीक्षा स्वीकार करने के बाद हमारा कर्तव्य क्या है?
नित्य सिद्धा कृष्ण प्रेमा सज्ज कबुनोय श्रावणादि सुदिचिति करिये उदय That love for Krishna is dormant within everyone's heart.
Krishna ke prati prem har jeev ke hriday mein sushupt avastha mein maujood hai.
Covered by endless material attachments and misconceptions, this love has been forgotten.
Kyunki ye bahut prakar ke bhautik aasakti se dhaka gaya hai, isliye prem ko hum bhul gaye hain.
By associating with the Lord's devotees and chanting the Lord's holy names, this original natural love within us is awakened.
भगवान के भक्तों का संग करने से और उनका नाम कीर्तन करने से ये प्रेम फिर से जागृत हो सकता है.
Our constitutional position is we are eternally the servants of Krishna.
हमारी वैधानिक स्थिति है कि हम भगवान कृष्ण के शाश्वत सेवक हैं.
जीवर स्वरूपोय कृष्णर नित्य दास. But coming into the atmosphere of material existence, we naturally become inclined to want to be the enjoyer.
लेकिन भौतिक आसक्ति के कारण हम अपने आप को भोक्ता मान बैठते हैं.
This enjoying spirit is an expression of the soul's envy toward God.
ये जो भोग करने की प्रवृत्ति है ये आत्मा का भगवान के प्रति ईर्ष्या की भावना का रूप है.
We want to be the proprietor.
हम मालिक बनना चाहते हैं.
We want to be the enjoyer.
और हम भोक्ता भी बनना चाहते हैं.
And we long for honor and respect.
और हम आदर और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं.
All of these are meant to be offered to Krishna.
ये सभी चीजें कृष्ण को अर्पण किए जाने चाहिए.
Maya means that which is not.
माया का मतलब है जो नहीं है.
She deludes us to think that we will be happy by engaging in the very activities and cultivating the very desires that perpetuate our bondage.
माया हमें ऐसे बताती है कि वही क्रिया जो हमारे बंधन को बढ़ाने वाले हैं उनको करने से हम सुखी हो सकते हैं.
And block us from our real satisfaction.
और हमारे सच्चे संतुष्टि से हमें वो रोकती है.
Maya is so strong.
माया बहुत शक्तिशाली है.
दैवी हेषु गुणमायी मम माया तुरत्यया मामैवाम यै प्रपद्यन्ते मायां एतद्धरन्ति ते. These three ropes of the modes of nature keep us tightly bound.
प्रकृति के तीन गुणों की रस्सी हमें बांध के रखती हैं.
But if we take shelter of the Supreme Lord, we can easily cross beyond.
लेकिन अगर हम भगवान का आश्रय लेते हैं तो हम बड़े आसानी के साथ को पार कर सकते हैं.
Chanting of the holy names is the simplest, most direct process by which we have the opportunity to take shelter of the Lord.
भगवान कृष्ण के नामों का जप करना ये बहुत ही सरल तरीका है जिससे हम भगवान का आश्रय ले सकते हैं.
काली कले नाम रूपे कृष्ण अवतार. In this age of Kali Yuga, the Lord especially incarnates in His holy name.
इस कलयुग में विशेष रूप से भगवान अपने पवित्र नाम के रूप में प्रकट हुए हैं.
With all of His powers and all of His opulences.
अपने सारे शक्ति और सारे ऐश्वर्यों के साथ.
When Krishna appeared within this world, not everybody understood him for who he was.
जब भगवान कृष्ण धरती पर प्रकट हुए तो सब लोग नहीं समझ पाए कि वो कौन है.
Because Krishna reveals himself according to how we approach him.
क्योंकि कृष्ण हमारे सामने वैसे ही प्रकट होते हैं जैसे हम उनके सामने जाते हैं.
To Kamsa, he was bitter enemy.
कंस के लिए भगवान कृष्ण बहुत कड़े शत्रु थे.
To others, he appeared to be an ordinary man with some special powers.
बाकियों के लिए कृष्ण एक साधारण व्यक्ति थे जिनके पास कोई विशेष शक्ति थी.
Only for those who truly wanted to love him and serve him did he reveal who he really was.
सिर्फ जो सच्चे रूप से उनकी सेवा करना चाहते थे उनको भगवान ने प्रकट किया कि मैं वास्तव में कौन हूँ.
Similarly, the name Krishna appears to some to be like any other syllables from an alphabet.
ऐसे ही ये जो अक्षर हैं कृष्णा, ये कई लोगों को ऐसे लगता है कि साधारण अक्षर हैं।
What is the difference? We could speak so many sounds if we can speak this.
क्या फर्क है चाहे हम कोई शब्द बोलें या ये कृष्णा बोले?
But Krishna by his inconceivable potency manifests them in those two syllables, Krishna.
लेकिन अपनी अचिंत्य शक्ति से भगवान अपने आप को ये दो अक्षर कृष्णा में प्रकट कर रहे हैं।
According to our sincerity.
हमारे सच्चे प्रामाणिकता के अनुसार।
Therefore, in Shikshastakam, Sri Chaitanya Mahaprabhu teaches, first, what is the tattva of how Krishna descends within His name?
शिक्षास्त्रकम में चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं कि तत्व क्या है कि कैसे कृष्ण अपने नाम के रूप में प्रकट हुए हैं।
The step by step process by which the holy name can purify our hearts and award us the ultimate love that we are looking for.
और वो धीरे धीरे वो तरीका क्या है जिसके द्वारा हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है।
But the Lord also teaches us how we should live. In what consciousness by which Krishna will reveal himself in his name.
लेकिन भगवान ये भी बताते हैं कि हमें किस चेतना में रहना है जिसके द्वारा भगवान अपने नाम के रूप में प्रकट होंगे।
त्रिनादपि सुनिचेना तदोर इबासहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनिया सदाहरि। Humble like a blade of grass.
घास के तिनके के समान नम्र बनना।
The grass is willing to take the lowest position to be stepped upon.
घास अधम स्थिति लेने को तैयार है जिसके ऊपर लोग पैर रख सके।
At this moment, what you are sitting on is sheets that are just covering the grass.
अभी आप जो चादरों पर बैठे हैं उसके नीचे घास है।
You are presently sitting, stepping, with no concern. How many of you are thinking about the feelings of the grass that are under your body right now?
अबे आपके शरीर के नीचे जो घास है उसके बारे में कितने लोग सोच रहे हैं कि उसकी क्या भावना चल रही?
But the grass, not expecting anything in return, is simply rendering service.
लेकिन घास जो है बदले में कुछ नहीं सोच रहे, सिर्फ सेवा कर रहे।
And the tree may stand 7 months, 8 months, without a drop of water.
और पेड़ जो है 6 महीने, 7 महीने बिना जल के बूंद के रह जाता है।
Yet is giving us fruit.
फिर भी हमें फल प्रदान कर रहे हैं।
The mango, the summer season is the hottest.
जो गर्मी का मौसम होता है सबसे ज़्यादा गर्म होता है।
The summer season is a time when the trees have not seen water since the monsoons.
वो समय है जबकि बहुत समय से बरसात के मौसम से जल देखा ही नहीं है पेड़ों ने।
No water, standing in the scorching sun.
कोई पानी नहीं, बस कड़कती गर्मी में खड़े रहना।
Yet provides us with the juiciest fruit to refresh us.
फिर भी हमें बहुत अच्छा रसों से भरा हुआ फल देता है।
And gives us shade from the sun.
और हमें सूर्य के गर्मी से छाया प्रदान करते हैं।
Such tolerance.
ऐसे सहनशीलता।
We must learn from the tree.
हमें पेड़ से सीखना चाहिए।
And without desiring honor.
और हमें आदर की इच्छा नहीं करनी चाहिए।
This is a very great trap of Maya.
ये माया का एक बहुत बड़ा जाल है।
Even after giving up all material objects of pleasure. Still, the heart longs for honor.
सब भौतिक इंद्रिय तृप्ति त्यागने के बाद भी हृदय में मान सम्मान की इच्छा बनी रहती है।
But a devotee understands that whatever I can do is by Krishna's grace.
एक भक्त जानता है कि मैं जो कुछ भी कर पाता हूँ वो भगवान कृष्ण की कृपा से ही है।
We can capture Krishna if we give honor to him.
अगर हम कृष्ण को आदर देते हैं तो हम उनको जीत सकते हैं।
And give honor to all others who he is empowering.
और जिनको भगवान शक्ति दे रहे हैं उनको भी हम आदर प्रदान करें।
And not expect it for ourselves.
और अपने आप के लिए आदर की इच्छा ही नहीं रखें।
To the degree we could follow these principles, we will taste the nectar of the holy name.
Jitna hum in siddhanton ka palan karenge utna hi hum naam ke ras ka aaswadan kar payenge.
Because the name is the supreme person.
Kyunki naam ek param vyakti hai.
And the name will personally reciprocate.
Aur naam jo hai vyaktigat roop se aadan pradan karega.
Srila Prabhupada told us that we can show our love for him by how we cooperate together to fulfill his mission.
Srila Prabhupada ji ne bataya ki aap mujhe dikha sakte hain kitna prem kar rahe hain jitna hum uske mission ke liye miljul kar karya karte hain sahyog karte hain.
It's very difficult.
Ye bahut mushkil hai.
In the age of Kali Yuga, unless we really try to practice this verse of Trinadapi Sunichena, we cannot really show our love for Prabhupada because it will be impossible for us to cooperate.
इस कलयुग में जब तक हम इस त्रिनादपि सुनिचन के सिद्धांत का पालन नहीं करते तब तक हम प्रभुपाद जी के प्रति प्रेम नहीं दिखा सकते क्योंकि सहयोग नहीं हो सकता.
This is priority.
लेकिन ये महत्वपूर्ण है.
According to Krishna, in order to receive the truth, it is imperative to approach a bona fide spiritual master.
Krishna ke anusar satya ko janne ke liye ek pramanik guru ke paas jana avashyak hai.
Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tatva darshana. One should approach not for any social fashion.
हमें गुरु के पास एक सामाजिक फैशन के तौर पर नहीं जाना चाहिए.
Not to get some higher recognition or prestige.
ज्यादा मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए नहीं करना चाहिए.
If that's what you want, you may get some of that, but you will not get anything else.
अगर आप यही चाहते हो तो वो मिल जाएगा लेकिन और कुछ नहीं मिलेगा.
Krishna tells we should submit ourselves.
कृष्ण बताते हैं कि हमें समर्पण करना चाहिए.
We should inquire submissively, genuinely wanting to learn with an eagerness to follow.
हमें नम्रतापूर्वक जिज्ञासा करनी चाहिए जानने के लिए और साथ में इसका पालन करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए.
Submissive inquiry and enthusiasm to serve are the qualities of a disciple.
नम्रतापूर्वक जिज्ञासा करना और उत्साहपूर्वक सेवा करना ये एक शिष्य का कर्तव्य है.
And the spiritual master who is coming in disciplic succession is revealing the truth to us.
Aur Gurudev jo ki parampara mein aa rahe hain wo satya prakat kar rahe hain.
And what is that truth?
Aur wo satya kya hai?
Krishna tells in Gita that all living beings are in me and they are mine.
Krishna kehte hain ki sare jeev mere mein hain aur wo mere hain.
We are all eternal souls, part of Krishna.
हम सब शाश्वत आत्मा हैं, कृष्ण के अंश हैं.
Our sole motivation in anything we do or anything we say should be to please Krishna.
हम जो भी करें या जो भी बोलें उसमें एक ही उद्देश्य होना चाहिए, कृष्ण को प्रसन्न करना.
In order to come to this platform, we must be very sincere.
इस स्तर पर आने के लिए हमें बहुत प्रामाणिक होना चाहिए.
Sincere to perform our sadhana.
इस साधना करने में बहुत प्रामाणिक रहना चाहिए.
Very attentively.
बड़े ध्यानपूर्वक.
Sincerely.
सच्चे दिल से.
Chanting at least 16 rounds of Mahamantra every day.
हर रोज कम से कम 16 माला महामंत्र का जप करें.
It must be a priority in our life.
ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होना चाहिए.
Not that we just arrange our chanting around everything else.
ऐसे नहीं कि दूसरे कार्यों के बीच में हम चैंटिंग को एडजस्ट कर दें.
Everything else in our life should be arranged around our chanting.
हमारे जीवन के सब जो चीजें हैं वो नाम जप के केंद्रित करते हुए करने चाहिए.
And by doing so, we're actually showing Krishna that he is a priority.
और ऐसा करने से हम कृष्ण को दिखा रहे हैं कि हम उनको महत्वपूर्ण मानते हैं.
Not that he's just some spicing we add to our life.
ऐसा नहीं कि जो जीवन की चीजें हैं उसमें नमक मिर्च के रूप में कृष्ण को अर्पण किया है.
He is the substance. He is the purpose of our life.
वो हमारे जीवन का उद्देश्य हैं, वही लक्ष्य हैं.
And we must follow these four regulative principles.
और हमें इन चार नियमों का पालन करना चाहिए.
No illicit sex, no intoxication, gambling, or meat eating.
मांस भक्षण नहीं करना, अवैध स्त्री संग नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और परस्त्री गमन नहीं करना.
These four sinful activities perpetually cover the soul with ignorance.
ये पाप क्रिया जो है आत्मा को अज्ञान से ढक देते हैं.
When the elephant takes bath, yesterday we were at Gokul Dham, and we were talked all about the local elephant.
हम कल गोकुल धाम गए थे और वहाँ पर वहाँ के हाथियों का वर्णन बताया गया था.
He's very big disturbance to all neighbors.
पड़ोसियों को बहुत disturbance पैदा करने वाला.
But devotees like him very much.
लेकिन भक्त उनको बहुत पसंद करते हैं.
Because the neighboring land used to have all crops everywhere.
क्योंकि जो पड़ोस के जो जमीन है वहाँ पर अनेक प्रकार की खेती थी.
But the spring of fresh water is in that land.
लेकिन जो अच्छा पानी है वो वहीं पर उपलब्ध है.
We were not allowed to bring our bullocks in there to collect large quantities of water.
और हमको वहाँ पर जाकर बैल से पानी लेना वर्जित था.
But the elephant comes in at night and destroys the crops completely.
रात के समय हाथी आता और पूरे खेती को नष्ट कर देता.
He walks in them, he eats them, he rolls in them, he sleeps on them.
वो खाता है, उनको सोता है और उनके ऊपर लौटने लगता है.
And what can they do?
और इसके बारे में वे भी कुछ नहीं कर सकते.
So they stop growing.
इन्होंने खेती करना बंद कर दिया.
So now we can take water to our full satisfaction.
इससे हमें जितना पानी चाहिए हम ग्रहण कर सकते हैं.
But what other animal can do that to crops?
और कौन सा जानवर है जो खेती को ऐसा कर सकते
हैं? So one elephant.
सिर्फ एक हाथी.
Very powerful.
बहुत शक्तिशाली.
And recently he also killed one child.
और कुछ समय पहले उन्होंने एक बच्चे को मार दिया.
But please understand, this is a very calm elephant.
लेकिन ये जान लो ये तो बहुत शांत हाथी है.
Committing offenses to the holy name is like a mad elephant.
और नाम पवित्र नाम के प्रति अपराध करना ये पागल हाथी के समान.
We have this little garden of our bhakti that we are growing.
हम अपने हृदय में भक्ति का बगीचा बना रहे हैं.
And this bhakti lata bija, which has been awakened by the grace of Guru and the Vaishnavas.
ये भक्ति लता बीज गुरु और वैष्णवों की कृपा से जागृत हुआ है.
Just starting to sprout.
और अभी वो उगने लगा है.
We water it by hearing and chanting the glories of the Lord.
हम भगवान के नाम महिमा का श्रवण कीर्तन करके उसमें जल सिंचन करते हैं.
We must protect it with a little fence by following the four regulative principles.
चार नियमों का पालन करके हमें रक्षा करनी चाहिए उसकी.
But then we must guard against the offenses.
फिर हमें अपराधों से भी बचना चाहिए.
Especially the first offense.
विशेष करके पहला नाम अपराध.
Which is compared by Lord Chaitanya to be mad elephant.
जिसकी तुलना चैतन्य महाप्रभु ने एक पागल हाथी से की है.
Not just the little elephant.
ये छोटे मोटे हाथी नहीं.
Not a calm, happy elephant.
ऐसा नहीं कोई शांत प्रसन्न हाथी.
A very angry, mad elephant.
बहुत ही पागल क्रोधी हाथी.
One mad elephant. What we have seen in Gokul Dham, the neighboring places. 100 acres they can't grow because he just destroys everything.
एक पागल हाथी हमने गोकुल धाम में देखा और पड़ोस में सैकड़ों एकड़ जमीन जो है वहाँ पर भी कुछ उगाया नहीं जा सकता उसके कारण.
And every now and then he will come with a friend.
और कभी कभी वो अपने मित्रों को साथ ले आता.
It's a very good lesson.
ये बहुत बड़ा सबक है.
We should not play with mad elephants.
हमें पागल हाथियों के साथ खेलना नहीं चाहिए.
I was told that not long ago some of our brahmacharis, they wanted to see closer the elephant.
बताया गया कि कुछ समय पहले कुछ हमारे ब्रह्मचारी वो हाथी को जरा पास से देखना चाहते थे.
So he roared and started chasing after them to kill them.
वो जोर से गरजा और इनका पीछा करने लगा मारने के लिए.
They ran very fast.
बहुत तेजी से भाग गए
Probably faster than they ever ran in their life.
अपने जीवन में कभी इतनी तेजी से भागे नहीं थे.
And they ran down a hill.
और पर्वत के नीचे की ओर दौड़े.
Elephants can run very fast up hills, but down hills very difficult because they're so heavy.
हाथी ऊपर चढ़ सकते हैं आसानी से, लेकिन नीचे उतरना मुश्किल है क्योंकि वो बहुत भारी होते हैं.
So we should not play with mad elephants.
हमें पागल हाथी से खेलना नहीं चाहिए.
Or they will trample us, kill us.
क्योंकि वो हमको कुचल के नष्ट कर देंगे.
And devastate the garden of our bhakti from within our heart.
हमारे हृदय की जो भक्ति की जो बगीचा है उसको नष्ट कर देंगे.
Chaitanya Mahaprabhu told that offending devotees spirit on the spiritual level this is what happens to you.
Chaitanya Mahaprabhu ne bataya hai ki bhakton ka aparadh karna adhyatmik star se wo is prakar hai.
But still after hearing it so many times and reciting it every morning we feel no problem, let me hear some blasphemy or let me speak some blasphemy.
लेकिन ये सब होने के बाद भी हम रोज अपराध नाम अपराध गाते भी हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि मैं थोड़ी निंदा कर लूं.
But it is a very serious subject.
लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है.
We must take it to heart.
हमें उसको हृदय से स्वीकार करना चाहिए.
And the second offense is to consider the names of the demigods like Lord Brahma or Shiva to be equal to or independent of Lord विष्णु's name.
दूसरा नाम अपराध है कि ये मानना है कि ब्रह्मा और शिव जी के नाम जो हैं भगवान विष्णु के स्वतंत्र या उसके बराबर हैं.
कृष्ण has revealed in Srimad Bhagavatam and other literatures his supremacy.
भागवत में और दूसरे शास्त्रों में भगवान कृष्ण ने अपनी श्रेष्ठता प्रकट की है.
लॉर्ड ब्रह्मा who happens to be the father of all living beings within this entire universe.
ब्रह्मा जी जो कि पूरे सृष्टि के पिता हैं.
In Brahma Vimohan Lila, he stole the gopas and the calves.
ब्रह्मा विमोहन लीला में उन्होंने गोप और बछड़ों को चुरा लिया.
But Krishna manifested and expanded himself to look identical to all of them and perform pastimes for one year.
और कृष्ण ने अपने आप को प्रकट किया उन गोप और बछड़ों के रूप में और एक वर्ष तक ऐसी लीला की.
Brahma came down to see what kind of disturbance he had created.
Brahma ji aaye ye dekhne ke liye ki maine kaisa disturbance paida kiya hai.
Everything was just as it was before.
Sab kuch waisa hi tha jaise pehle tha.
He went to see maybe they escaped. Maybe they woke up.
Wo dekhne,
they were still sleeping.
Wo dekhne gaye upar shayad wo jaag gaye honge lekin dekha wahin par soye hain.
In a hidden place.
Chhipe hue sthan mein.
And he came back and they were all playing with Krishna.
और नीचे आके देखा वो कृष्ण के साथ खेल रहे थे.
He became bewildered.
वो बिल्कुल विमोहित हो गए.
Then each one of them manifested a four-armed form of Narayan.
और हर एक ने फिर चतुर्भुज नारायण रूप प्रकट किया.
Then he was very bewildered.
वो बिल्कुल विमोहित हो गए.
And he fell at the feet of Lord Krishna.
वो भगवान कृष्ण के चरण कमलों में गिर पड़े.
Offered beautiful prayers.
और बहुत सुंदर स्तुतियां अर्पण की.
When a firefly gives light in the darkness of night, he thinks he is very powerful.
जब एक जुगनू रात्रि के अंधकार में प्रकाश देता है तो वो सोचता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ.
But in the presence of the sun, he realizes I am insignificant.
लेकिन सूर्य की उपस्थिति में वो समझ जाता है कि मैं तुच्छ हूँ.
That is Brahma's realization in his relation with Krishna.
ये ब्रह्मा जी का साक्षात्कार है कृष्ण के संबंध में.
लॉर्ड शिवा ही इज इन वृंदावन वर्शिप्ड इज गोपेश्वर महादेव.
वृंदावन में शिव जी की आराधना होती है गोपेश्वर महादेव के रूप में.
ही इज लॉन्गिंग टू पार्टिसिपेट इन एनी वे इन सर्विंग कृष्णस लीला इन वृंदावन.
वो किसी भी रूप में भगवान कृष्ण की वृंदावन लीला में भाग लेना चाहते हैं.
वैष्णवानम यथा शंभु ही इज द ग्रेटेस्ट वैष्णव.
सारे वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ शिव जी हैं.
He is in tattva non different than Krishna but always in a position subordinate to Krishna.
वो तत्व में कृष्ण से अभिन्न है लेकिन कृष्ण की सेवा में है.
When he was defending Banasura in a great battle, Krishna defeated him.
जब वो बाणासुर की रक्षा करने के लिए युद्ध किए तब भगवान कृष्ण ने उनको पराजित कर दिया.
When he gave benediction to Prakasura, that anyone whose head he will touch will break.
जब उन्होंने वृकासुर को आशीर्वाद दिया कि जिसके सिर के ऊपर वो हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा.
Vrikasura went after Shiva.
वृकासुर शिवजी के पीछे ही दौड़ने लगे.
And ultimately only Krishna could save him.
और सिर्फ कृष्ण ही उनकी रक्षा कर पाए.
So this is very deep subject.
ये बहुत गहरा विषय है.
Sadashiva is Krishna, but like milk and yogurt, same substance, but in a different form.
सदाशिव ये कृष्ण है जैसे दूध और दही वही चीज लेकिन दूसरे रूप में.
So this second offense to the holy name is to consider the demigods like Lord Shiva and Brahma to be equal to the name of Lord Vishnu. So we are speaking of Shiva who was worshipped in his role as a demigod.
तो जहाँ पर हम ये वर्णन कर रहे हैं वो शिव वो देवता के रूप में जिसका वर्णन दूसरे नाम अपराध में आया है.
We worship demigods for the purpose of material benediction.
हम देवताओं की पूजा करते हैं भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए.
Or in this regard, sometimes for liberation.
और कभी-कभी मुक्ति के लिए.
But the names of Lord Vishnu are supreme.
ये भगवान विष्णु के नाम परम श्रेष्ठ हैं.
The third offense is to disobey the order of the spiritual master.
और तीसरा नाम अपराध है गुरु की अवज्ञा करना.
The spiritual master's order, Vishwanath Chakravarti Thakur explains, should become our life and soul.
विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं कि गुरु की आज्ञा ही हमारा सर्वस्व होना चाहिए.
Otherwise, what is the meaning of initiation?
नहीं तो दीक्षा का मतलब क्या है?
You will not make spiritual advancement simply by sitting at the yagya and taking initiation.
सिर्फ यज्ञ में बैठने से और दीक्षा लेने से आप आध्यात्मिक प्रगति नहीं करेंगे.
You will make spiritual advancement by performing the duties that come when you take initiation.
आध्यात्मिक प्रगति तब होगी जब आप वो कर्तव्य करोगे जो दीक्षा के बाद दिए जाते हैं.
Anyone can throw seeds in the fire.
कोई भी व्यक्ति अग्नि में बीज अर्पण कर सकता है.
Anyone could come and take a name and make some promises.
कोई व्यक्ति सामने आकर नाम ले सकता है और वचन दे सकता है.
But to follow those promises.
लेकिन वचनों का पालन करना.
And take the orders of Guru and Krishna as your life and soul. That is what initiation is about.
और गुरु और कृष्ण के वचनों को स्वीकार करना यही वास्तव में दीक्षा है.
And the ceremony is important because it formally connects us.
और ये समारोह महत्वपूर्ण है क्योंकि औपचारिक रूप से वो हमें संबंध जोड़ता है.
But the real connection beyond that formality is our intention to follow.
लेकिन वास्तविक संबंध है हमारे आज्ञा पालन करने की इच्छा.
Ramchandra, he followed the order of his Gurudev.
भगवान रामचंद्र ने अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया.
Even when he went to Janakpur or Mithila and he looked at Sita, his eternal consort, the love in his heart awakened.
जब वे जनकपुर में गए मिथिला में और उन्होंने अपने सीता देवी को देखा तो उनका हृदय का प्रेम जागृत हो गया.
But in order to attain her, he had to lift and string the bow of Shiva.
लेकिन उनको प्राप्त करने के लिए उनको धनुष उठाना था, उसे प्रत्यंचा चढ़ानी थी.
No other prince or king could even lift it.
दूसरा कोई राजकुमार या राजा उठा भी नहीं पाया था.
They could hardly even move it.
वो मुश्किल से हिला पाए थे.
He is the supreme personality of Godhead.
वो भगवान हैं.
He could do anything.
वो कुछ भी कर सकते हैं.
But still.
लेकिन फिर भी.
First he approached his guru Vishwamitra.
पहले वो अपने गुरु विश्वामित्र के पास गए.
Took the dust of his feet.
उनके चरणों की धूलि स्वीकार की.
Received his blessings.
उनका आशीर्वाद प्राप्त किया.
Only then did he approach the bow.
और फिर उन्होंने धनुष को हाथ में धारण किया.
Chaitanya Mahaprabhu, he did not begin his Sankirtan movement, which was the whole purpose of his descent, until he received that order to spread the holy name from his guru Ishwarapuri.
Chaitanya Mahaprabhu jo hari naam ka prachar karne ke liye aaye wo tab tak unhone shuru nahi kiya jab tak unhone apne gurudev Ishwarpuri se aagya nahi grahan ki.
And Krishna, he was collecting wood in the forest, even apparently getting lost in the middle of the night during a rainstorm to और गुरुदेव
कृष्ण अपने गुरुदेव की सेवा के लिए लकड़ी काटने के लिए गए थे और ऐसा लग रहा था कि रात में रास्ता खो बैठे हैं बरसात के सीजन में
व्यवसायत्मका बुध रेखे हुरु नंदना बहुशका ह्यनंत बुधयो व्यवसायनम Those who are on this path must be resolute in purpose.
जो इस मार्ग में हैं उनको दृढ़ निश्चय होना चाहिए.
We must have determination.
हमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए.
Otherwise, our intelligence will be many branched.
नहीं तो हमारी बुद्धि बहु शाखा हो जाएगी.
And to consider fourth offenses to blaspheme the Vedic literatures or literatures in pursuance of the Vaishnava version.
चौथा नाम अपराध है वैदिक शास्त्रों की निंदा करना या उन शास्त्रों की निंदा करना जो वेदों के अनुसार है.
श्रीमद् भागवतम भागवत गीता श्री चैतन्य चरितामृत भक्ति रसामृत सिंधु. These are the essence of all the Vedic literatures.
ये श्रीमद् भागवत भगवद गीता ये सब सारे वैदिक शास्त्रों का सार है.
We should never consider them to be in any way a composition by an ordinary human being.
हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये साधारण मानव की रचना है.
It is the revealed word of God.
ये भगवान के प्रकट किए हुए शब्द हैं.
Therefore, scientists, philosophers, technologists, they may have an explanation of reality.
इसलिए वैज्ञानिक दार्शनिक इनके पास अलग अलग सत्य को समझाने के तरीके होंगे.
But they are only seeing through their materialistic, limited eyes.
लेकिन वो सिर्फ अपने भौतिक सीमित चर्म चक्षुओं से देख रहे हैं.
They have imperfect senses.
उनकी इंद्रियां अपूर्ण हैं.
Tendency to cheat.
धोखा देने की प्रवृत्ति है.
In this way, we have. But the scriptures. The scriptures is God's perception, God's version, as He is revealing to us.
लेकिन शास्त्र जो है वो भगवान की दृष्टिकोण है जैसे वो अपने आप को प्रकट कर रहे हैं.
So we should never fall prey to blaspheming or underestimating the authority of the Vedic literatures.
कभी भी हमें वैदिक शास्त्रों की निंदा नहीं करनी चाहिए उनकी उनकी शक्ति को कम नहीं मानना चाहिए.
And to consider the chanting of the name of the Lord, the glories of the Lord, His holy name to be an imagination.
अगला नाम अपराध है कि भगवान नाम की महिमा को काल्पनिक समझना.
We hear the power of the glories of the name.
हम नाम की महिमा सुनते हैं.
Ajamil, just by chanting once, offenselessly, at the time of his death, all of his sins were removed.
अजामिल ने मृत्यु के समय सिर्फ एक बार बिना अपराध के नाम लिया और उनके सारे अपराध दूर हो गए.
रूप गोस्वामी tells, I do not know how much nectar the two syllables Krishna have produced.
रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये दो अक्षर कृष्णा इसमें कितना आनंद में वर्णन नहीं कर सकता.
When I chant, I desire millions of tongues to chant and millions of ears to hear.
जब मैं गाता हूँ तो मेरी इच्छा होती है कि मेरे पास लाखों जीवा हो और सुनने के लिए लाखों कान हो.
And it conquers my heart.
वो मेरे हृदय को जीत लेता है.
This is not imagination.
ये काल्पनिक नहीं है.
This is the realizations of those who are actually tasting the holy name.
ये जो सच्चे दिल से नाम का आस्वादन कर रहे हैं उनका साक्षात्कार है.
The scriptures teach and our acharyas teach that simply by chanting with a sincere and humble state of mind, the name will reveal the Lord's form. The Lord's qualities, the Lord's abode, the Lord's pastimes, and our own eternal relationship with the Lord.
शास्त्रों में बताया गया है कि सच्चे दिल से नाम लेने से नाम से ही रूप गुण लीला भगवान का धाम और भगवान के साथ हमारा संबंध सब प्रकट हो जाएगा.
Should never think this to be an imagination.
ये कभी सोचना नहीं चाहिए कि ये काल्पनिक है.
And we should not give interpretation to the holy name of the Lord.
और भगवान के नाम के भौतिक अर्थवाद नहीं करना चाहिए.
Evam parampara praptam idam rajashayabhati. We accept parampara, and in this way we understand as it is.
हम परंपरा को स्वीकार करते हैं और इस तरीके से सत्य को जानते हैं.
So many volumes of translations and purports of Bhagavad Gita are there, but only those who are in parampara can actually transform heart and make one a devotee of Krishna.
बहुत सारे भगवत.
Everyone else has a different understanding.
बहुत सारे भगवत गीता के अनुवाद हैं, लेकिन सिर्फ जो भक्ति का अनुवाद है वो व्यक्ति को भक्त बनवा सकता है, और बाकी सब दूसरे अर्थ बनाते हैं उनका.
So we must understand what is the holy name of the Lord from the acharyas.
हमें आचार्यों से जानना चाहिए कि पवित्र नाम क्या है.
As it is.
बस अपने प्रामाणिक रूप में.
Then we can develop real faith.
फिर हम सच्ची श्रद्धा जागृत कर सकते हैं.
And chant in the proper state of mind.
और फिर हम सच्चे दिल से नाम ले सकते हैं.
And one should not commit sinful activities on the strength of the chanting of the holy name.
भगवान के पवित्र नाम के स्तर पर पाप नहीं करना चाहिए.
This is a serious but common problem.
ये बहुत गंभीर है और अक्सर हो जाता है ये समस्या.
Yeah, we think I know the solution. By chanting the holy names, we remove our sins. So let me engage in this offensive activity, then I will chant and erase it.
हम सोचते हैं कि ये मुझे पता है, मैं कोई पाप करूंगा और फिर प्रायश्चित कर लूंगा नाम लेकर.
But if that is your mentality, the opposite will happen.
लेकिन अगर आपकी यही मानसिकता है तो उसका उल्टा फल हो जाएगा.
If you somehow or other fall victim to Maya and then you really repent your mistake and chant the holy name, you will be purified.
अगर आप कोई किसी अनजाने में माया में गिर जाते हैं, प्रायश्चित करते हैं, तो आप शुद्ध हो जाएंगे.
But if you intentionally engage in sinful activity thinking let me do this and then chant and everything will be nice.
लेकिन अगर आप जानबूझ के करते हैं और सोचते हैं कि मैं पाप करूंगा और शुद्ध जाऊंगा तो ये ठीक नहीं.
The holy name will punish you for that.
तो पवित्र नाम आपको सजा देगा इसके लिए.
श्री चैतन्य महाप्रभु said, if you commit sinful activities, especially if you blaspheme others, thinking that the holy name will protect you.
अगर आप पाप करते हैं, विशेष करके दूसरे की निंदा करते हैं, ये सोचकर कि नाम मेरी रक्षा करेगा.
The holy name himself will punish you.
तो पवित्र नाम ही आपको सजा प्रदान करेगा.
हरे कृष्ण. And the eighth offense is. Ah, yes. To consider the chanting of the holy names to be one of the auspicious ritualistic activities.
भगवान के नाम को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड समझना.
There are so many pujas.
बहुत प्रकार के पूजाएं हैं.
And so many temples are providing so many different forms of worship in order to counteract various ghosts or to achieve better success in our work, in our business, in our family.
और कई प्रकार की पूजाओं का वर्णन किया जाता है, भूत को निकालने के लिए या कोई सफलता, पारिवारिक सुख की प्राप्ति के लिए.
Krishna tells in Gita, Trigunya Vishaya Veda Nistrigunya Bhavarjuna, that the Vedas mainly deal with the three modes of material nature.
Krishna Gita में बताते हैं कि वेदों में प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन किया गया है.
And most of the rituals that we find in the Vedas are to elevate us within three modes of material nature.
और विशेष जो वैदिक रीति हम सुनते हैं वो हमको इन्हीं तीन गुणों में आगे बढ़ने के लिए है.
The chanting of the holy names is completely transcendental.
भगवान के पवित्र नाम का जप पूर्ण रूप से दिव्य है.
In this age of Kali, it is the only process.
कलयुग में यही एकमात्र तरीका है.
That can bring us to the highest platform.
जो हमको सबसे ऊंचे स्तर पर ले आ सकता है.
हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा. It's the only way in the age of Kali.
इस कलयुग में यही एकमात्र उपाय है.
Even deity worship or yajna or meditation, very difficult in the age of Kali.
अर्च विग्रह की सेवा करना, यज्ञ करना, ध्यान करना, ये सब कलयुग में बहुत मुश्किल है.
And all of those processes are meant to ultimately bring us to love of God.
और ये सब चीजें भी हमको कृष्ण प्रेम की ओर आगे बढ़ाने के लिए हैं।
What to speak of the rituals that are just in the modes of nature?
और ये रीति रिवाज का कहना ही क्या जो कि प्रकृति के नियम के अनुसार है।
So the acharyas have taught us that we must have great faith that if I simply chant Hare Krishna mantra sincerely, I can achieve the ultimate perfection.
हमारे आचार्य ने सिखाया कि अगर मैं सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ सफलतापूर्वक तो मुझे जीवन की सिद्धि प्राप्ति हो जाएगी।
Prabhupada said 90% of our spiritual advancement is according to how we are chanting the holy names.
श्रील प्रभुपाद जी बोले किस तरीके से हम नाम जप कर रहे हैं उससे हमारा 90% प्रगति होता है।
And one should not preach the glories of the holy names to the faithless.
और जो अश्रद्धालु व्यक्ति हैं उनको नाम की महिमा का प्रचार नहीं करना चाहिए।
We go on the streets and try to induce everyone to chant.
हम सड़कों पे जाकर सबको नाम जप के लिए प्रेरणा देते हैं।
But if we see that someone is offensive,
अगर हम देखते हैं कि किसी की भावना अपराधी है,
someone is blasphemous,
कोई अगर निंदा कर रहा है,
someone is without faith,
किसी के अंदर श्रद्धा नहीं है,
then we do not want to give them too much information about the internal significance of the holy name.
हम उनको ज्यादा जानकारी नहीं देना चाहेंगे नाम के महिमा के बारे में।
Because they will simply, the more they know, the more they will commit offenses.
जितना ज़्यादा वो जानते होंगे, उतना ज़्यादा वो अपराध कर बैठेंगे।
In fact, in certain situations where Prabhupada was giving lecture,
कोई स्थिति में जब प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे होते,
and he saw the people were very faithless and quite offensive,
और देखा कि लोग अश्रद्धालु हैं और अपराधी हैं,
he would stop his lecture.
वो लेक्चर बंद कर देते।
So just do kirtan.
मतलब जस्ट कीर्तन करो।
Just chant.
Just kirtan.
Give prasad.
और प्रसाद वितरण।
But if we give too much understanding philosophy of the holy name, people become angry.
और ज़्यादा अगर नाम की महिमा का अगर प्रचार किया जाए तो लोग क्रोधी हो जाएंगे।
Like putting giving milk and bananas to a serpent, it only increases their hatred.
सांप को अगर दूध और केला खिलाया जाए तो उसका और भी घृणा बढ़ जाएगी।
And the tenth offense is to not have complete faith in the chanting and to maintain our material attachments even after understanding so many instructions on this subject.
और दसवां नाम अपराध है कि नाम जप में पूरा विश्वास नहीं होना उसके बावजूद भौतिक आसक्ति को बनाए रखना।
The more we are given, the more responsibility we have.
जितना ज्यादा हमें दिया जाता है उतनी हमारी जिम्मेदारी होती है।
When we understand the philosophy of Krishna consciousness, we understand what our material attachments are that are keeping us back.
जब हम कृष्ण भावना को समझ जाते हैं तब हम जान लेते हैं कि क्या भौतिक आसक्ति है जो हमें बांध के रख रही है।
We must be very careful.
हमें बहुत सावधान रहना चाहिए।
By associating with devotees, we increase our faith.
भक्तों का संग करने से हमारी श्रद्धा बढ़ती है।
But by performing those activities or exposing ourselves to too many things that are materialistic, bad association, our faith is lost.
लेकिन खराब संग करने से हमारी श्रद्धा जो है वो नष्ट हो जाती है।
असत संग त्याग अवैष्णवाचार। महाप्रभु said you associate with devotees and avoid the association too intimately of those who will destroy our faith.
महाप्रभु ने बताया कि भक्तों का संग करना चाहिए और जो हमारी श्रद्धा को नाश कर सकते हैं उनका संग से दूर रहना चाहिए।
So we must arrange our life in such a way that our faith will grow.
हमें अपना जीवन ऐसा बिताना चाहिए जिससे कि हमारी श्रद्धा और बढ़ती रहे।
And we should keep those things of this world that we can actually use in Krishna's service.
हमें वही चीज अपने साथ रखनी चाहिए जो हम कृष्ण की सेवा में उपयोग कर सकते हैं।
And engage in those activities that are pleasing to Guru and Krishna.
हमें उन क्रियाओं में लगना चाहिए जो गुरु और कृष्ण को प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं।
Very important.
बहुत महत्वपूर्ण है।
And we should be very attentive when we are chanting.
और नाम जप करते हुए बहुत ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए।
Bhaktivinoda Thakur has said that inattentive chanting is the basis of all the other offenses.
Bhaktivinoda Thakur ने कहा है कि ध्यानपूर्वक जप न करना इससे ही सारे अपराध आ जाते हैं।
If we are actually chanting attentively, then naturally Krishna will protect us from these other offenses.
अगर हम ध्यानपूर्वक जप कर रहे हैं तो कृष्ण अपने आप हमें सारे अपराधों से बचा देंगे।
And we come back to Lord Chaitanya's teaching.
और फिर हम वापस चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में आते हैं।
त्रिनारपि सुनिच्छे न तरोर इबासे हिष्णुना अमानि न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। If we're striving to follow this principle, and really trying to chant attentively,
then
we will cross beyond all of these 10 offenses by Krishna's grace.
अगर हम सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं और ध्यानपूर्वक जप करने का प्रयास कर रहे हैं तो हम अपने आप इन सारे अपराधों से पार चले जाएंगे.
So this initiation ceremony is very, very holy event.
ये जो दीक्षा समारोह है ये बहुत ही पवित्र उत्सव है.
It is a day when all of you who are assembled are going to be making lifelong vows before God, before Guru, before the fire. And all the assembled Vaishnavas.
ये आज के दिन आप गुरु के सामने, वैष्णव के सामने, अग्नि के सामने और भगवान के विग्रह के सामने आजीवन प्रतिज्ञाएं ग्रहण करने वाले हैं.
This promise you're making is the most important part of your life.
ये जो वचन आप दे रहे हैं आज वो आपके जीवन का बहुत सबसे महत्वपूर्ण भाग है.
And you must live every day in pursuance of following this vow.
और हमें अपना हर दिन इस प्रतिज्ञा के पालन करने में बिताना चाहिए.
And by doing so, Krishna will empower us.
और ऐसा करने से कृष्ण हमें शक्ति प्रदान करेंगे.
To be an instrument of His love within this world.
जिससे कि हम इस दुनिया में उनके प्रेम के एक औजार बन सकें.
And then we will understand, realize the supreme happiness that Krishna wants all of us to enjoy in this life. And forevermore.
और फिर हमें वो आनंद का अनुभव होगा जो कृष्ण हमें देना चाहते हैं इस जीवन में और हमेशा के लिए.
As the servant of the servant of his servants.
उनके दासों के दासों के दास के रूप में.
Thank you very much.
बहुत धन्यवाद.
हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण.